ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम सबको इस साल पहले से ही तैयार कर दिया है और ये स्पष्ट कह दिया कि ये साल किस रूप में हमें मनाना है। एक और बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष है, तो पहले बाबा ने कहा स्नेह का वर्ष है, फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठता का वर्ष है और चौथा बाबा कहे अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने का वर्ष है। ये वर्ष के लिए हमें बहुत सुंदर एक फाइनल फोकस दे दिया है, क्योंकि जितना हम सबके अंदर स्पष्ट होगा उतना ही हम बाबा जो चाहते हैं उसको सही तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। तो पहले तो जब बाबा ने कहा ये स्नेह का वर्ष है और साथ साथ बाबा ने संगठन को मजबूत करने के लिए इशारा दिया, क्योंकि जितना हमारा संगठन पावरफुल होगा, अलौकिक होगा, सशक्त होगा, उतना ही समाप्ति वर्ष को अच्छी तरह से हम आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि समाप्ति तो हमें करनी है ना। इसीलिए बाबा ने एक संकल्पना हमें दी है इस साल के लिए कि ये समाप्ति वर्ष माना पहले तो हमें अपने अंदर कुछ समाप्त करना होगा। तो क्या समाप्त करना है? हमारे अपने अंदर अभी तक भी कई प्रकार का पुरानापन है, पुराना स्वभाव कहो, पुराने संस्कार कहो, पुरानी विचारधारा कहो, पुराने संस्कारों के कारण, आदतों के कारण अंदर ही युद्ध करने की जो स्थिति पैदा होती रहती है, चाहे अपने आप से व्यक्ति लड़ रहा है, चाहे अपने अंदर अपनी कमजोरियों से लड़ रहा है, चाहे अनेक प्रकार के कमजोरियों के कारण जो विघ्न निर्मित हो रहे हैं उससे लड़ रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। स्नेह की शक्ति, संगठन की शक्ति हमारे अंदर वो बल भरेगी जो समाप्त करना आसान हो जाएगा। अगर हम एक एक बिखरे बिखरे होंगे तो लड़ते ही रहना होगा, समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले बाबा ने स्नेह का वर्ष कहा, ताकि स्नेह के धागे में पिरोते हुए एक माला के मणके हम बने, और ऐसी जब संगठन की शक्ति होगी तो उसके सामने विघ्न आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। विघ्न भी तभी आते हैं जब बिखरे हुए हैं, अलग अलग है। जिस तरह बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे एक शेर को भी शिकार करना होता है, भाई हिरण का शिकार करना है या किसी भी जानवर का शिकार करना है तो उसके झुंड से वो उसको अलग करता है और अलग होते ही फिर उसके ऊपर वार होता है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी जो अनेक विघ्नों का आने का कारण है उसका कारण यही है कि कहीं कहीं हम भी बिखरे हुए हैं। इसीलिए हमें संगठन में अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। जितना इस स्नेह के धागे में हम पिरोए रहेंगे, एक ही माला के मणके बन करके रहेंगे, तो कैसे भी विघ्नों को समाप्त करना आसान हो जाएगा या विघ्न आने की हिम्मत ही नहीं करेगा और तब अपने कमजोरियों को समाप्त करना, अपने अंदर रहे हुए पुरानेपन को समाप्त करना आसान होगा। क्योंकि ये पुरानापन बहुत सारे विघ्न क्रिएट करता रहता है और मैं समझती हूं हर एक अनुभवी है ही है कि किस तरह कोई ना कोई पुराना संस्कार हमारे लिए एक नया विघ्न खड़ा करता ही है। जब समाप्ति वर्ष कह दिया तो पहले मुझे अपने आप में बहुत कुछ समाप्त करना है और समाप्त करने के लिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा श्रेष्ठता से। तो कर्मों की श्रेष्ठता कहो, विचारों की श्रेष्ठता कहो, अपने स्वभाव संस्कारों में श्रेष्ठता को धारण करना होगा, तब वो बार बार उभरेंगे नहीं। नहीं तो आज समाप्त किया पुरानापन लेकिन वो जगह खाली पड़ गई तो फिर वापस आ जाएंगे। इसीलिए उस जगह को भर देना है श्रेष्ठता से। तो वो मुझे अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर सचमुच कितनी श्रेष्ठता को मैंने अपने जीवन के अंदर धारण की है। पुराने जीवन और ब्राह्मण जीवन दोनों को सामने रखते हुए हम कंपेयर करें कि पुराने जीवन की पुरानी बातें क्या अभी तक भी है या समाप्त किया है मैंने, और ये ब्राह्मण जीवन में कितनी श्रेष्ठता, किन किन बातों में श्रेष्ठता हमने अपने अंदर लाया है, इसको अभी से चेक करना है। क्योंकि जितनी श्रेष्ठता हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी उतना ही हम अपने जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बनेंगे। अब समय ऐसा आ रहा है कि वाणी का प्रभाव भी कम होता जाएगा और हर इंसान देखना चाहेगा, और जब वो हमारे कर्मों की श्रेष्ठता को देखेंगे, क्योंकि एक तरफ उन्होंने दुनिया की गिरती हालतों को देखा है और ऐसी गिरती कला की दुनिया को देखते हुए जब उसी में श्रेष्ठता क्या होती है उसका प्रत्यक्ष स्वरूप देखेंगे तो सहज स्वतः एक मैग्नेट की तरह वो खींच करके हमारे तरफ आएंगे, यानी बाबा के ज्ञान के तरफ आएंगे कि आपने ये चीज कैसे अपने अंदर किया। तो अनेक आत्माओं की जीवन, अनेक आत्माओं की ज्योति हमारे जीवन द्वारा प्रत्यक्ष जागृत हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने ये चारों बातें जो कही, इन चारों बातों में आपस में बहुत गहरा संबंध है और ये चारों ही बातें हमें जैसे होमवर्क के रूप में ये साल के लिए मिला है कि जो होमवर्क हमें करना है। इसलिए कहा स्नेह का वर्ष, समाप्ति का वर्ष, श्रेष्ठता का वर्ष और अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने का वर्ष। क्योंकि अगर अभी तक भी हम ब्राह्मण आत्माएं कोई न कोई विघ्न में ही उसको सुलझाने में सल्टाने में लगे हुए हैं, तो हम अपनी स्थिति को विजयी स्वरूप की स्थिति कैसे बना सकेंगे। जब सोचो कि भक्ति मार्ग में भी हमारा यादगार चाहे गणेश जी के रूप में है, चाहे शिव शक्तियों के रूप में है, कि जो निर्विघ्न बनने का वरदान देने वाले हैं, तो ये हमारा ही वर्तमान समय कहो या अंतिम समय का स्वरूप जो भक्ति मार्ग में कायम हो जाएगा। तो जो खुद दूसरों के विघ्न को मिटाने वाले हो, विघ्नहर्ता हो, वो खुद अगर विघ्नों के साथ लड़ रहे हो तो कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा नहीं। इसीलिए अपने स्वरूप को इमर्ज करो कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं शिव शक्ति स्वरूप या मैं प्रत्यक्ष विघ्नहर्ता गणेश जी हूं, इस रूप में अपने आप को देखना है। और जितना इस स्वरूप को इमर्ज करते जाएंगे, माना हम अपने विघ्नों को समाप्त करते जाएंगे, अपने विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो अंतिम समय में जितना हमारा बहुत काल का यह स्वरूप होगा, तब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल माना सालों के साथ नहीं है, इसका संबंध सालों के साथ नहीं है, लेकिन मैं निरंतर निर्विघ्न स्वरूप में कितना समय रहती हूं। ये नहीं कि एक दिन निर्विघ्न स्थिति में रहे और दूसरे दिन बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों का तूफान शुरू हो गया, नेगेटिव विचारों का तूफान शुरू हो गया, उसको खत्म करने में मैं अपना समय दे रही हूं। तो इसीलिए बहुत काल माना मैं कितना दिन तक लगातार निर्विघ्न स्वरूप में, विजयी स्वरूप में स्थित रह सकती हूं। एक दिन का है काल, कितना अभ्यास मेरा है, एक दिन का है, एक हफ्ते का है, एक महीने का है, एक साल का है। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा, तब हमारी स्थिति स्थायी होने लगेगी। और स्थिति स्थायी है तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो बाबा कहते हैं अंतिम समय विघ्नों के पहाड़ गिरेंगे, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि उसी समय में हमारी प्रत्यक्षता होगी, विघ्नों के समय ही व्यक्ति की स्थिति की प्रत्यक्षता होती है कि ये विजयी है या बस ऐसे ही था। विघ्न आने पर, विघ्नों के पहाड़ गिरने पर खत्म हो गया, क्या हुआ? तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। साथ ही साथ एक तरफ तो विनाश ज्वाला के समय जब अनेक विघ्न आएंगे तब हम अपने आप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, और दूसरी ओर तभी हम आने वाले समय में जब इतने विघ्नों के पहाड़ गिरेंगे, उस समय जो आत्माएं होंगी उसके लिए इष्ट स्वरूप बन सकेंगे। तो एक तो इष्ट स्वरूप बनना है और दूसरा विघ्नों के समय हमारी पहचान होती है, हम अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और उसी से ही नंबर फाइनल होने हैं, फाइनल पेपर के द्वारा ही, कि भाई अष्टरत्न में जाने हैं या 108 में जाने हैं, 16,000 में जाने, किस में जाने हैं, तभी हम अपने नंबर को फाइनल करते हैं। दूसरों के लिए जो इष्ट बनेंगे, वो इष्ट बनने के लिए अपने आप में चेक करो कि अष्ट शक्ति संपन्न स्वरूप है मेरा, क्योंकि विघ्नों को खत्म करने के लिए अष्टभुजाधारी देवी बनना होगा हमें। अष्टभुजाधारी देवी माना अष्ट शक्ति संपन्न स्थिति, जिसकी ये अष्ट शक्तियां संपूर्ण रूप में आ गई है, लेकिन ये भी मालूम है कि कौन सी शक्ति का प्रयोग कब करना है, तब अनेक आत्माओं के लिए इष्ट बन जाएंगे। इसलिए विजयी स्वरूप कौन सा है हमारा, विजयी स्थिति कौन सी है? अष्ट शक्ति संपन्न। अष्ट शक्ति है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका प्रयोग गलत जगह हो जाता है। सहन करना है वहां पर सहनशीलता की कमी हो जाती है, क्योंकि विघ्न का स्वरूप कब बन जाते हैं हम? विघ्नों का स्वरूप तभी बनते हैं जब सहनशीलता की कमी, धैर्यता की कमी, सरलता की कमी, जब ये तीन गुणों की कमी आ जाए, सबसे पहली सहन शक्ति की कमी, तो एकदम आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। बाद में रियलाइज करते हैं थोड़ा सहन कर लेते थे तो क्या बिगड़ना था, कुछ नहीं होना था। तो सहन शक्ति कितनी मेरे अंदर है? सहन नहीं होता है तब विघ्न खड़ा होता है, क्योंकि जब आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, तो काम बिगड़ता जाता है, और बिगड़ेगा तो विघ्न तो खड़ा होगा ही। इसी तरह धैर्यता, जब व्यक्ति के अंदर धैर्यता की कमी, अधीर्य हो जाता है, और अधीर्यपन में आकर के कोई ना कोई गलत डिसीशन, गलत कदम, गलत दिशा पकड़ लेता है, तब व्यक्ति के सामने विघ्नों का रास्ता खुलता है। और तीसरा सरलता, सरलता का नेचर, सहज बन जाओ। बाबा भी अभी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सरल हो जाए। जितना हम अनेक प्रकार की अपेक्षाएं लेकर के चलते हैं, ये मुझे मान दे, ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे ऐसा दे, सरल नहीं है। अरे मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्या बिगड़ना है, क्या फर्क पड़ना है ना? और ये अच्छा कि इतना हम अपना पुरुषार्थ तो कर पाते हैं। जितना सरलता, सहजता नेचर के अंदर आने लगेगी, तब हम निर्विघ्न स्वरूप अपना प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो ये तीन गुणों की कमी जब जीवन में आती है, तब अनेक प्रकार के विघ्न खड़े होते हैं। दूसरा मुख्य कारण जो विघ्न खड़ा होने का है, जैसे बताया, एक तो अपने पुराने स्वभाव संस्कार, कमजोरियों के स्वभाव संस्कार, ये तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अमृत वेला मिस होता रहता है। और जहां अमृत वेला, जो सकाश का टाइम है, वरदान प्राप्त करने का समय है, वही अगर मेरा मिस हो जाए तो विघ्न तो आएंगे ही, और विघ्न का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये अमृत वेला हमारा जितना पक्का रहेगा, तो बाबा के वरदानों की शक्ति, या उस समय जो मैंने एकाग्रचित होकर के तपस्या की है, वो तपस्या मेरे लिए सारा दिन के लिए जैसे कवच का काम करेगी, जो हर प्रकार के विघ्नों से मेरी रक्षा करती रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब आप देखते हैं कि विघ्न आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि मेरी तपस्या कम हो गई है, तपस्या की शक्ति को मुझे बढ़ा देना है। और ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि जैसे ही हम अपनी तपस्या बढ़ा देते हैं, तपस्या बढ़ाने से क्या होता है, एक तो मौन में चले जाते हैं, ये भी तपस्या है। तो मौन में चले जाओ, तपस्या की शक्ति, याद की ताकत को बढ़ा लो, तो अपने आप विघ्न आएंगे भी, लेकिन वो मुझे छू नहीं सकते हैं, साइड से निकल जाते हैं। तपस्या की शक्ति को बढ़ाना माना अपने पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना, और विघ्न क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी आएगी भी तो वो पॉजिटिव एनर्जी का जो कवच है वो आते हुए साइड से चली जाएंगे। दूसरी बात, आप लोग ने कई बार ये सुना होगा, प्रैक्टिकल देखा भी होगा कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है तो उस वक्त कई मंदिर खाली बच जाते हैं, बाकी बड़े बड़े बिल्डिंग ही टूट जाती है, लेकिन मंदिर बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं मंदिर? लोग दुनिया में ये समझते हैं कि ये मंदिर जो है ना, सचमुच यहां शक्ति का प्रताप है या शक्ति का की रक्षा है, इस कारण से बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटीज के समय भी मंदिर बच गए। कभी भी आप देख लो, जब केदारनाथ में इतना ये हुआ, नुकसान हुआ, तो उस समय केदारनाथ का मंदिर बच गया, बाकी सब खत्म हो गया। क्यों बच गया? ऐसे कई जगह मंदिर बच जाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाता है, आसपास की सारी जगह समाप्त हो जाती है, एक मंदिर खाली बच गया। ऐसा तभी होता है कि जब वहां के भक्त जो आते हैं उनके अंदर इतनी श्रद्धा और भावना होती है कि उस वातावरण को भी पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर लेते हैं, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव विश्वास के साथ जब वो चार्ज होता है, विश्वास है ना भक्तों का, तो भक्तों का जो विश्वास है वो विश्वास की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि उस एनर्जी से वो स्थान, वो वातावरण चार्ज हो गया, और उस कारण वो आया, विघ्न आया, चाहे नेचुरल कैलामिटीज के रूप में, लेकिन वो उस विश्वास का जो वाइब्रेशन था उसको छू नहीं सका और साइड से निकल गया, दूसरा सब तबाह करके गया लेकिन उसको नहीं छू सका। ठीक इसी तरह बाबा भी हमेशा हमें कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय माना विश्वास, स्वयं में विश्वास कि मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा हूं, साथ ही साथ बाबा में हमारा विश्वास कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, ये विश्वास, और परिवार का विश्वास, ड्रामा में विश्वास कि मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है, परिस्थिति या कोई भी मुझे छू नहीं सकती है, जिसका यादगार रामायण के अंदर कितना सुंदर रीति से दर्शाया कि हनुमान अपना स्वरूप जो है बड़ा भी कर लेता था तो छोटा भी कर लेता था, क्योंकि जिस तरह माया अपना स्वरूप विकराल भी करती है तो सूक्ष्म स्वरूप लेकर के भी आती है, ठीक इसी तरह हमें भी अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, लेकिन जितना सूक्ष्म अपने अंदर हम जाते जाएंगे उतना हमारा स्वरूप, हमारी शक्ति इतनी विशाल हो जाएगी, जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे सामने, यानी कोई भी विघ्न हमारे सामने, हमें हराने की ताकत नहीं रखेगा, इतना हमारा विश्वास हो जाएगा। तभी बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, जब बाबा कहते कि आप उस समय ये सोचो, विघ्न जब आता है तब, कि हजार भुजा वाला सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो अक्षौणी सेना भी सामने आ जाए वो मेरा मुझे हिला नहीं सकती है, मेरा बिगाड़ नहीं सकती है, ताकत नहीं है। अक्षौणी सेना भी एक साथ हो जाए तो भी ताकत नहीं है कि वो मुझे हिला सके या मेरा नुकसान कर सके, लेकिन पहले अपने अंदर तपस्या के द्वारा इतनी पॉजिटिव एनर्जी तो बढ़ाओ, अपने स्वरूप को ऐसा बनाओ तो सही। अगर मुझे बार बार व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये अनेक प्रकार के क्वेश्चन अभी तक उत्पन्न होते रहते हैं, मेरी बुद्धि फुल स्टॉप स्वरूप में नहीं है कि जो हुआ उसमें भी कोई कल्याण, जो हो रहा है उसमें भी कोई कल्याण, अगर मेरी बुद्धि में फुल स्टॉप नहीं है, अनेक प्रकार के सवाल और वो सवाल के कारण व्यर्थ चिंतन चलता रहता है, तो मैं निर्विघ्न कैसे बनूंगी? हर विघ्न मुझे प्रभावित अवश्य करेगा, क्योंकि मेरी पॉजिटिव एनर्जी इतनी है ही नहीं जितना ये क्वेश्चन और संशय, व्यर्थ संकल्प जो उत्पन्न होता है या नेगेटिव विचार आते, वो क्या करता है, हमारा कवच समाप्त कर देता है, मेरे कवच को ही खत्म कर देता है। इसलिए हर छोटी बड़ी बात मुझे प्रभावित करती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने स्वरूप को फुल स्टॉप स्वरूप बना दो, ऐसा फुल स्टॉप स्वरूप के चाहे कितनी भी बातें आए, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। क्यों क्या मैं, मुझे जाना नहीं है, क्यों क्या मैं, जाएंगे तो अनेक प्रकार का व्यर्थ चिंतन पर चिंतन जरूर आरंभ होगा ही होगा, और वह मेरी शक्ति को क्षीण करेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी मेरी ड्रेन हो रही है। इसीलिए तो हर प्रकार के विघ्न मुझे इफेक्ट में ला ही देंगे। तो जो विघ्न आज हमारे लिए जो कहते शिक्षक बन जाते हैं, हमें कुछ सिखाने आए, हमेशा ये दृष्टिकोण अपना लो। इसलिए हमेशा कहा जाता कि विघ्न के प्रति अगर दृष्टिकोण बदली कर दो तो वह विघ्न विघ्न नहीं रहेगा। दृष्टिकोण क्या बदली करें हम, कि कोई भी विघ्न आए तो समझो ये मुझे कुछ सिखाने आया है, ये विघ्न जो आया है शायद मेरे अंदर कोई ना कोई शक्ति की कमी है, वो शक्ति बढ़ाने के लिए आया है, या मुझे अनुभवी बनाने के लिए आया है। तो क्या अनुभव सीखना है, क्या बाबा देना चाहता है, उसको लेते जाओ अपने अंदर। हमेशा भक्ति मार्ग में तो क्या, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी बाबा को याद करते हैं तो अक्सर ब्राह्मण बाबा को क्या कहते हैं, योग में क्या कहते हैं, बाबा शक्ति देना, कहते हैं ना शक्ति दो बाबा। अमृत वेले भी बैठेंगे, बाबा शक्ति भरना मेरे अंदर, बाबा की शक्ति प्राप्त कर। अब बाबा कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमा देंगे कि ये ले लो शक्ति, ऐसे दे देंगे क्या। अब जब शक्ति मांगी है तो भगवान का शक्ति देने का तरीका अपना है, और वो शक्ति कैसे भरता है, शक्ति मांगी है तो परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति को सुलझाने में ही शक्ति मिलेगी, ये तरीका है भगवान का शक्ति देने का। अब आप बताओ शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। शक्ति चाहिए तो माना विघ्न तो आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि उसी विघ्न में शक्ति समाई हुई है, उसी विघ्न को सुलझाने में, उसको दूर करने में हमारे अंदर जो शक्ति का निर्माण होता है। कई बार कई लोग ये महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा पेपर था मेरे सामने, लेकिन पता नहीं ऐसा लगा उस समय बाबा की मदद मिली और तब मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ गई, मैं ऐसी शेरनी बन गई और मैंने इतना बड़ा पेपर कैसे पार किया, आज मुझे वंडर लगता है, लेकिन उस समय कैसे पार हो गया पता नहीं। तो शक्ति मिली ना, उस विघ्न से ही तो शक्ति मिली। तो इसीलिए विघ्न का आना माना बाबा की कोई ना कोई शक्ति हमें मिलने वाली है जरूर। ये पॉजिटिव दृष्टिकोण अगर अपना लेते हैं कि ये विघ्न आया है, अब बाबा मुझे कौन सी शक्ति देना चाहता, क्योंकि अष्ट शक्ति आए, अष्ट शक्ति ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगी। इसीलिए कहा कि अष्ट शक्ति के पेपर तो आएंगे, और वो पेपर में ही हमें वो शक्ति मिल रही है, तभी हम अनुभवी बनते हैं। तो इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, हाय क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, अरे बार बार मेरे सामने विघ्न आ रहा है, बाबा शक्ति भर रहा है। इसीलिए ये सोचो, बाबा शक्ति भर रहा है, हमें मजबूत कर रहा है, बड़े से बड़े पेपर भी पार करने की हमारे अंदर हिम्मत आ जाए, ऐसी शक्ति बाबा हमारे अंदर भर रहा है। तो विघ्नों का आना माना, एक तो शक्ति प्राप्त होना, दूसरा हिम्मत आना, तीसरा बाबा का साथ अनुभव करना। योग बढ़ जाता है तो बाबा 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 शुरू हो जाता है कि नहीं होता है, है ना? तो बाबा की याद बढ़ जाती है, बाबा का साथ अनुभव होता है, तो विघ्न का आना फायदेमंद है या नुकसानकारी है? अगर विघ्न आएंगे ही नहीं तो बाबा को याद करेंगे क्या इतनी लगन से? विघ्न के समय कितनी लगन से बाबा की याद होती है, अमृत वेला मिस नहीं होता है। लेकिन अगर विघ्न आए ही नहीं तो सुस्त नहीं बन जाएंगे? तो विघ्न नहीं आना माना सुस्त बन जाना। तो माया भी देखती है ना, ये थोड़ा सुस्त हो गया, अब एक विघ्न खड़ा कर दो इनके सामने, तो थोड़ा वापस अलर्ट में आ जाते हैं। बाबा इसीलिए कई बार कहते हैं, माया जो है ना मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है, है ना? क्यों? क्योंकि बाबा तो फिर भी रहम दिल है, बाबा जब बच्चों को देखता है तो बच्चों के प्रति रहम आ जाता है, लेकिन माया रहम करने वाली नहीं है। इसलिए जैसे ही माया देखे कि ये सुस्त हो गया पुरुषार्थ में, चलो विघ्न ले जाओ, तो विघ्न आते ही वापस खड़े हो जाते हैं हम, अरे बाबा 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 कहाँ चला गया, बाबा कहाँ चला गया, है ना? तो ये विघ्न का आना माना बाबा की याद की लगन बढ़ा देने वाली चीज है। इसीलिए बाबा कहते विघ्नों को वेलकम करने वाले जो होते हैं ना, वो मजबूत होते जाते हैं। मुझे याद आता है कि बचपन के अंदर एक माँ जो थी अपने बच्चे को बाहर खेलने भेजती थी। आजकल बहुत ये हो गया है कि बच्चा गिरना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने में माँ बाप बच्चों को छोड़ देते थे खेलने के लिए, वो खेलने में गिरता था, चोट लगती थी, बहुत कुछ होता, लेकिन उसमें मजबूत हो जाता था। आजकल जितना छोटे बच्चों को प्रोटेक्टेड रखते हैं, बाहर खेलने नहीं भेजते, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनेक प्रकार के उसके खिलौने भी ऐसे बने ताकि वो गिरे नहीं। अब जब गिरेगा ही नहीं तो संभलेगा कैसे? इसीलिए वो नाजुक रह जाते हैं, और नाजुक रहने के कारण क्या होता है, नाजुक होने से कारण क्या होता है, कमजोर रहता है, और कमजोर रहता है तो बहुत जल्दी डिप्रेशन उन बच्चों को आता है जिन्होंने बचपन में कभी ठोकरें खाई ही नहीं। पहले के जमाने के लोगों ने इतनी ठोकरें खाई है क्योंकि माँ बाप को 8-10 बच्चे होते थे, कहाँ एक एक को संभालते रहते थे, है ना? इसलिए उसको खुला छोड़ देते थे, गिरते थे, संभलते थे, मजबूत हो जाते थे। आजकल 1-2 बच्चे होते तो इसी तरह माया भी जब देखती है ना ये बच्चा कमजोर है तो क्या करेगा, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए तो बाबा भी हमें कभी कभी खुला छोड़ देते। बाबा को भी हजारों बच्चे है ना, खुला छोड़ देते हैं, अब गिरो संभलो, है ना? और उसी में मजबूत होते जाते हैं, और उसमें ही जो मजबूत बनते हैं तो बाबा को कमजोर बच्चे नहीं चाहिए, बाबा को मजबूत बच्चे ही चाहिए, जो माया से टक्कर लेने वाले हैं ऐसे बच्चे ही बाबा को चाहिए। क्योंकि 2500 साल अगर राजधानी संभालने के लिए देनी है तो कमजोरों के हाथ में थोड़ी देगा, वो तो शक्तिशाली लोगों के हाथ में देगा। तो माया की कसौटी पर जब खरा उतरता है, वो जो चमकदार हीरा बनता है, उसी को ही भगवान भी कहता, वाह ये मेरा हीरा है, इसके हाथ में राज्य 2500 वर्ष सौंपने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तभी तो वो निश्चिंत होकर के परमधाम में बैठ जाता है। कमजोरों के हवाले देगा तो क्या करना पड़ेगा फिर उसको, बार बार नीचे आकर के टेंशन हो जाएगा, ऊपर शांति से निश्चिंत होकर के वो 2500 साल बैठ नहीं सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं माया इनको मजबूत करो। तो इसीलिए आज से विघ्नों से डरेंगे या डरेंगे क्या? जो डरा मरा, इसलिए कहते हैं जो डरा वो मरा, है ना। लेकिन जो मजबूत होता है उसको कभी डर नहीं लगता है, वो उसके अंदर शक्ति भरती जाती है, शक्ति भरती जाती है, और वो इतने मजबूत हो जाते हैं, वो कमजोर कभी नहीं रहते हैं। तो जो अंतिम समय में भी बड़े से बड़ा पहाड़ गिरने वाले हैं, उसमें भी वो खरा उतरता है, और उस खरे उतरते एक एक कसौटी पर जब वो निखरता जाता है तब तो फ्लॉलेस डायमंड बन जाता है। 24 कैरेट तभी तो बनता है, नहीं थोड़ी बनता है। तो एक एक विघ्न का आना माना एक एक फ्लॉ निकालना, हीरे के अंदर जो फ्लॉ है वो फ्लॉ निकलता जाता है, और तब तो बेदाग हीरा बनता है। तो इसीलिए विघ्नों से डरने वाले कमजोर होते हैं, विघ्नों का आवाहन करके उसको पार करने वाले, बस पार करने की युक्ति आनी चाहिए। एक तो जैसे कहा तपस्या कभी कम नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। दूसरा, मुरली बहुत पावरफुल साधन है। अक्सर जब व्यक्ति निर्विघ्न रहता है ना तो व्यक्ति मुरली मिस करता जाता है। लेकिन जैसे ही विघ्न आया तो फिर सोचता है अरे बाबा की मुरली मिस हो गई ना। इसीलिए सुस्ती में आकर के मुरली कभी मिस नहीं करो। मुरली सबसे बड़ी तलवार है जो हर विघ्नों को काटने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मुरली जो है बहुत बड़ा शस्त्र है। एक तो हमारी ढाल बन करके हमारी रक्षा भी करती है। तो मुरली में रोज नई नई बातें जो मिलती है वो मुरली की बातों से ही हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। पिछली बातें भूलने का सबसे बड़ा सहज साधन है मुरली। लेकिन अक्सर कई बार लोग कहते हैं मुझे, पहले इतने बाबा के जब बने ने तो इतनी खुशी थी, इतना उमंग उत्साह था, इतने विघ्न नहीं आते थे, बाद में पता नहीं क्यों इतने विघ्न आते तो और ही ढीले हो जाते। मैं उनको हमेशा कहती हूँ, एक बच्चा जब चलना सीखता है ना तो माँ बाप अंगुली देते हैं, अंगुली पकड़ते हुए वो बच्चे को चलाते हैं। लेकिन बीच बीच में माँ बाप क्या करते, अंगुली को छोड़ते, देखे उसमें बैलेंस आया कि नहीं, अपने पैरों पर वो चल पाता है कि, फिर भले तुरंत पकड़ते हैं लेकिन थोड़ी देर तो उसको अकेला भी चलने देते हैं। तो शुरू शुरू में हम ज्ञान में जब आए ना तो बाबा ने अंगुली पकड़ी हुई थी हमारी, अंगुली पकड़ करके चला रहा था हमें। इसलिए बड़े से बड़े पेपर उस समय जो आए लौकिक वालों से आते हैं, ज्ञान में चलते हैं तो चलना, आप हरेक अपना अपना बचपन याद करो, ईश्वरीय बचपन को कितने विघ्न आए हो, लेकिन हर विघ्न को क्रॉस करना कितना आसान था। लौकिक वालों से आए, चाहे एक एक धारणा जब करते गए तो विघ्न आया कि नहीं आया, परिवार में रहते विघ्न आया कि नहीं आया, हर एक के सामने आया। लेकिन उस समय इतना उमंग उत्साह, और क्योंकि बाबा की अंगुली थी इसीलिए उसको पकड़ते हुए चले तो सहज हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे बाबा ने अंगुली छोड़ी कि अब अपने पैरों पर चल, तो अपने पैरों पर जब चलना चालू करते बैलेंस नहीं रहता है तो गिरता है उठता है संभलता है फिर गिरता है उठता है संभलता है। तो ये स्टेज हरेक की आती ही है, ये ज्ञान में भी। लेकिन उस समय ये नहीं आना चाहिए कि अरे पहले नहीं आए थे इतने, पहले भी आए थे लेकिन उस समय बाबा की छत्र छाया या बाबा की अंगुली पकड़ के चल रहे थे, इसीलिए नहीं, इतनी हिम्मत थी इतनी शक्ति थी कि कोई आपके रास्ते को रोक नहीं सका। बाबा की अंगुली कौन सी है? श्रीमत। श्रीमत रूपी अंगुली पकड़ करके चल रहे थे इसीलिए सेफ थे। तो आज भी अगर विघ्न आया, माना कोई न कोई श्रीमत का उल्लंघन हुआ है तभी ये विघ्न आया है। और इसीलिए कौन सी श्रीमत का उल्लंघन हुआ है उसको पहचानते हुए पुनः उस श्रीमत में अपने आप को मजबूत कर लो, वह अंगुली पकड़ लो बाबा की। और जैसे ही आप पकड़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चों को बाबा जैसे कहते नजदीक के चश्मे कमजोर होते हैं, दूर के चश्मे बहुत अच्छे होते हैं। दूर की नजर बड़ी तेज होती है, नजदीक की नजर कमजोर होती है। तो दूसरों की कमी कमजोरी तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन खुद की कमी कमजोरी कहाँ है वो दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अपने नजदीक की नजर को ठीक करें। दूर की नजर को छोड़ो, अभी नजदीक की नजर को ठीक करो। अपनी कमी कमजोरी कहाँ है, कौन सी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ पर मेरी नेचर में कोई ना कोई कमजोरी आ गई है, कोई ना कोई नाजुकपना आ गया है। चलते चलते ब्राह्मण जीवन के अंदर भी बाबा की बहुत मदद मिलने के बाद कभी कभी नाजुकपना आ जाता है, तो वो नाजुकपना कहाँ आया है उसको पहचानना है और उसको समाप्त करना है। इसलिए बाबा ने कहा समाप्ति और श्रेष्ठता। जहां जहां कमजोरी आई उसको समाप्त करो, नाजुकपना आया समाप्त करो, तब अपने अंदर श्रेष्ठता को धारण करते हुए अपने जीवन को प्रत्यक्ष करो। तो इसीलिए बाबा के हर एक बात हमें जैसे कहीं ना कहीं इशारा देते हुए आगे बढ़ाती है। हर बात के लिए बाबा ने ज्ञान तो हमें संपूर्ण रीति से दे ही दिया है कि बच्चे अगर ये बातें आई है तो कहीं न कहीं अपने आप को देखने की, वापस रीवैल्यूएट करने की जरूरत है कि मेरे अंदर कहां कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई है। कुछ रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है भीतर से अपने आप को। और जब अपने आप को भीतर से सुव्यवस्थित करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, अपने धारणाओं को, अपने जो बातें हैं उसके अंदर नवीनता लाने की जरूरत है। और ये साल में अगर नवीनता लाते हुए आगे बढ़ते जाओ तो देखो निर्विघ्न विजयी स्वरूप हमारा कितना सुंदर बनता जाएगा। और वो निर्विघ्न विजयी स्वरूप अनेक आत्माओं को भी विजयी बनने की प्रेरणा देने वाला हो जाएगा, क्योंकि बाबा हम बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। ये बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो एक एक बच्चे अपने आसपास वालों के सामने भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो बनेगा ही, चाहे आप अपने गांव में, आप अपने शहर में, अपने समाज के अंदर, हर जगह बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले आप एक एक ऐसे रत्न बाबा ने चुने हुए हैं। तो इसीलिए चुने हुए रत्न हैं, चुने हुए बाबा के लाल है, तो जरूर विघ्नों को समाप्त करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से हमेशा बाबा इसीलिए कई बार कहते हैं ये विघ्न क्या है, कुछ नहीं, कागज का शेर है, कुछ नहीं है ये, तो ये हमें बच्चों को हिम्मत भरने के लिए। तो वो हिम्मत अपने अंदर इतनी पावरफुल भर ले ताकि कोई भी परीक्षा हमें फेल न कर सके। और तब बाबा की याद आती है कि बाबा कहते हैं कि जब ऐसे पास विथ ऑनर्स होंगे ना, कितना चाहिए बाबा, कम से कम 5% ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, 5% का ग्रेस मार्क्स दे सकता है, वो भी हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन, हमारे सारे उसको देखते हुए, रिकॉर्ड, हमारा चरित्र आदि से अंत तक देखते हुए 5% ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन पास विथ ऑनर्स होने के लिए 95% तो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, होना ही चाहिए। और इसीलिए जितना बाबा की याद की शक्ति से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाते चलो, तब विजयी स्वरूप की स्थिति हमारी सारी दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होगी, अनेकों को साक्षात्कार आप करा सकेंगे। एक स्थान पर रहते हुए भी अनेक आत्माएं आपका साक्षात्कार करेगी। इसलिए कहा कि विघ्न ही हमें प्रत्यक्ष करने का सबसे बड़ा साधन है, तो इस साधन के द्वारा ही आप प्रत्यक्ष होंगे ही। और अनेक आत्माएं पहचानने वाली तो ठीक, लेकिन न पहचानने वाले भी देखेंगे, अच्छा तो विघ्नों के समय ही तो उसकी प्रत्यक्षता होती है। तो ये बाबा अभी हम बच्चों से चाहते हैं कि अनेक आत्माओं की ज्योति इसी जीवन के द्वारा ऐसी जग जाए, उनको संदेश मिल जाए कि बस वो भी सहज ही आपको देखते हुए बाबा की याद की लगन में मगन होकर के शरीर छोड़े। इसीलिए बाबा उनको कहते लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि वो अंतिम समय जो स्थिति होंगी उसी के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसीलिए हो सकता है कि आप युद्ध में रह जाओ, वो आत्माएं दूसरे का साक्षात्कार करते हुए लगन में मगन होकर के चले भी जाए। तो अभी हमें अपने अंदर तपस्या की शक्ति को बढ़ाना है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, व्यर्थ संकल्प क्यों क्या वाले संकल्प, पर चिंतन के संकल्प, व्यर्थ चिंतन, इम्प्यूरिटी के चिंतन के संकल्प से अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि यही मन को कमजोर करता है। कवच जितना हमारा पावरफुल रहेगा उतना हर विघ्न को पार करना आसान होगा। बाबा यही कहना चाहते कि जैसे फ्लाइट में चले जाओ तो पहाड़ नीचे होते हैं, सारे खड्डे आदि सब नीचे होते हैं, ठीक इसी तरह हमारी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि हमको बूस्टर का काम करके हमारी स्थिति को इतना ऊंचा ले जाए तो विघ्न हमें प्रभावित कर नहीं सकते हैं। कोई भी विघ्न हमारे नजदीक नहीं आ सकते हैं, हमें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि विघ्न सारे ग्राउंड लेवल पर ही आते हैं। अगर बहुत ज्यादा विघ्न आ रहा है, माना अभी तक हमने अपनी स्थिति को ऊंचा उठाया ही नहीं, हम ग्राउंड लेवल पर ही चल रहे हैं, अभी तक चींटी की चाल ही चल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर है इसीलिए सारे विघ्न आ रहे हैं। तो विघ्न आना माना अपने आप को ऊंचा उठाना, ये हमें संकेत मिलता है कि ऊंचा उठा लो अपने आप को। जितना अपनी स्थिति को ऊंचा उठाएंगे, जितनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे, उतना ही हम निर्विघ्न स्वतः होने लगेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निर्विघ्न बन जाओ और अपने विजयी स्वरूप की स्थिति से बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। ठीक है, तो ये था निर्विघ्न समय की मांग है।